प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर
यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के श्लोक नंबर 1 में दो बार गवाही दी है, परमात्मा सशरीर है और उस परमेश्वर का सबका धारण पोषण करने के लिए भी शरीर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो भी एक अन्य शरीर है और वो अतिथि रूप में आता है, कुछ दिन मेहमान रूप में यहां रहकर अपने तत्व ज्ञान का प्रचार करके फिर प्रस्थान कर जाता है। अतिथि उसको कहते हैं जिसके आने की तिथि पूर्व निर्धारित ना हो। तो परमात्मा ऐसे आता है जिसका किसी को पता नहीं होता वो कब प्रकट होगा, कहां होगा। ऐसे वो परमात्मा जब अतिथि रूप में आता है तो भी उसका एक शरीर है और सतलोक में परमात्मा जो रहता है वो उसका एक और तेजोमय शरीर है। परमात्मा साकार है। अपने आत्माओं, सतयुग के ब्राह्मण और वेद के पूर्ण विद्वान और दुर्गा की पूजा करें, अरे तरह गजबे, फिर कहां के विद्वान थे, उन्होंने वेदों को समझा क्या? अपने आत्माओं, गीता जी को नहीं समझा उन्होंने ही। तो क्या बताते हैं भाई, सतगुरु बिन का हुन पाया ज्ञान, जो तो था बुझ छड़े किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। अब ये सार नहीं समझ सके, गीता और वेदों को भी नहीं समझ सके ये लोग, क्यों? क्योंकि इनको सतगुरु नहीं मिले, ना ब्रह्मा को मिले, ना विष्णु को मिले, ना शिव को मिले। ब्रह्मा विष्णु शिव को मालिक मिले अवश्य थे, मिलने का तात्पर्य ये नहीं है कि सामने आमने दर्शन हो ले, दो बात कर ली, नहीं। वो तत्व ज्ञान उनको बताया जाता है 34वें अध्याय चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि उन तत्वदर्शी संतों को दंडवत प्रणाम करने से और कपट छोड़कर निष्कपट भाव से प्रश्न करने से वो तत्वदर्शी संत आपको तत्व ज्ञान बताएंगे, यानी एकाधीन होकर। और अधीन ये ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं हो पाए, इसलिए परमात्मा इनको मिले अवश्य थे, लेकिन इनको इन्होंने ज्ञान ग्रहण किया नहीं मालिक से। तो इससे अब इनको मिले भी नहीं, वो मिलकर भी नहीं मिले, क्योंकि इनको ज्ञान मिला नहीं, वो तत्वदर्शी संत रूप में उन्होंने माना नहीं प्रभु को, इसलिए परमेश्वर उनको ज्ञान नहीं दिया। ज्ञान कोई ऐसा नहीं भागते भागते किसी एक एकड़ पर थोप दे, ये तो अति अधीन दीन हो प्राणी, और वह को कहना ये अकथ कहानी, अकथ जो कितने बिना वर्णन की जा सकता ये ज्ञान। अति अधीन दीन हो प्राणी, बहुत भी नम्र भाव से और सच्ची श्रद्धा से पूछे उसको ये तत्व ज्ञान बताना धर्मदास, अन्यथा इसका जिक्र मत करना। तो क्या बताते हैं कि गुरु बिन काहू न पाया ज्ञान, और जो थो था वो छड़े किसान। अब वर्तमान में एक महर्षि पा करा था दानंद, जो आर्य समाज का प्रवर्तक है। अब सतयुग के ब्राह्मणों को ज्ञान नहीं था, इस कलियुगी ब्राह्मण ने कितने ज्ञान होता है, ब्राह्मण था जाति से। एक तो ब्राह्मण होते हैं अपने धंधा करके खाओ बेचारे, वो उनकी वो इस कैटेगरी में नहीं आते। ये वो ब्राह्मण है जो गुरु पद प्राप्त करते हैं, उनको ब्राह्मण कहते हैं। ये उन्हीं में से था और इसके द्वारा लिखा सत्यार्थ प्रकाश नामक एक पुस्तक सुप्रसिद्ध थी यहां पर, और उसके विषय में ये दंत कथा थी कि महर्षि दयानंद जी ने वेदों अनुसार सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है। उसमें लिखा भी है स्पष्ट कि वेद आदि सदग्रंथों के आधार पर इसकी रचना की है, और उस वेदों के को टोटली विपरीत लिखा गया उसमें, क्योंकि वो अज्ञानी था, वेद ज्ञानहीन था दयानंद जो महर्षि, तो इसको कहना पड़ता है क्योंकि इसकी इस बिना इसकी पहचान नहीं बनती, बाकी महर्षि नहीं था, ये तो बिल्कुल डुप्लीकेट आदमी था। इसने क्या का ज्ञान भी नहीं था, ना समाज का, ना कोई भक्ति का, ना कोई व्यवहार का, किसी नियम से। अब देखो आपके समक्ष ये तो दास ने वर्बली बताया, अब आपको दिखाते हैं ये इनका यथार्थ तो इन्होंने लिखा है, वही जो का तो दिखाते। देखिए सत्यार्थ प्रकाश, अब इनसे निर्णय होगा कि ये किसे ऋषि थे, क्योंकि वेदों के ज्ञान को ये असत्य मानते हैं और वेदों के विरुद्ध इन्होंने अपनी थ्योरी बना रखी थी। सत्यार्थ प्रकाश महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा रचित, ये कहां से प्रकाशित है, सत्यार्थ प्रकाश है, इसके विषय में क्या लिखा है, वेद आदि विविध सदशास्त्र प्रमाण संविंतर। वेद आदि विविध ओहो सद ग्रंथों से, सदशास्त्रों के प्रमाणों से इसकी रचना की है। किसने, श्रीमद परमहंस प्रीवराजक आचार्य महर्षि दयानंद सरस्वती स्वामी विरचित है। ये कहां से प्रकाशित है, वैदिक यति मंडल दयानंद मठ दीनानगर पंजाब से प्रकाश। ये मुद्रित कहां से है, मुद्रक है आचार्य प्रिंटिंग प्रेस दयानंद मठ गुहाना मार्ग रोहतक से। इसका हम थोड़ा सा आपको रिहर्सल कराएंगे, 154 पृष्ठ पे सातवें समोल्लास में ये देखिएगा, ये सातवां समोल्लास है, और 154 पृष्ठ पे नीचे लिखा है, किसी ने प्रश्न किया है महर्षि दयानंद जी से कि ईश्वर साकार है वा निराकार, उत्तर स्वामी जी ने दिया निराकार। 155 पृष्ठ पे खुद ही साकार सिद्ध कर रहे हैं स्वामी जी। किसी ने प्रश्न किया कि परमेश्वर की सतुति प्रार्थना और उपासना करनी चाहिए वा नहीं, प्रश्न महर्षि दयानंद का, करनी चाहिए। प्रश्नकर्ता कहता है क्या सतुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़ सतुति प्रार्थना करने वाले का पाप छुड़ा देगा, यानी पाप नाश कर देगा। स्वामी जी कहते नहीं। प्रश्न, तो फिर सतुति प्रार्थना क्यों करना, अब प्रश्नकर्ता सही कह रहा है, जो भगवान पाप पर नाश नहीं कर सकता फिर भक्ति क्या जरूरत है। उत्तर स्वामी जी का, उनके करने का फल अन्य ही है, कोई और ही फल है। क्या है, प्रश्नकर्ता ने कहा क्या है, उत्तर स्वामी जी का, सतुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुण कर्म स्वभाव से अपने गुण कर्म स्वभाव का सुधरना, प्रार्थना से निर्अभिमानता उत्साह और सहाय का मिलना, उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। अरे वाह महर्षि, 154 पर तक कहे भगवान निराकार है और 155 पर कहे उपासना से पाप तक कटे नहीं और परब्रह्म से मेल, ओहो यानी ब्रह्म से भी दूसरे भगवान, दूसरे ब्रह्म तो परमात्मा मेल मिलन हो जा, मेल भी साकार तो होगा, निराकार तो होके, निराकार सर्वव्यापक है, कण कण में विद्यमान है, तो पहले ही मिला हुआ अपने से, फिर मिलना के उस, जब वो है ही नहीं कितना, वो तो हमारे हमारे अंदर भी और बाहर भी है उनकी थ्योरी में। और फिर साक्षात्कार तो आमने सामने होता, साकार से निराकार से नहीं होता। अब पुण्य आत्माओं, जैसे कोई कहे किसी ने अपने आगे वैद्य की उपाधि ला रखी है पीछे, और बहुत बड़ा बोर्ड लगा रखा है और भोली जनता वहां जाती है बीमार, और उससे जाके प्रश्न करे कोई कि वैद्य जी क्या औषधि खाने से औषधि रोगी का रोग काट देगी, और वो उत्तर दे कि नहीं, औषधि से रोग नहीं कटता, दवाई से बीमारी नहीं कट सकती, तो प्रश्नकर्ता पूछ रहा है, मान लिए कि फिर औषधि क्यों खाएं जब रोग नहीं कटता औषधि से। उत्तर, वो वैद्य नकली वैद्य उत्तर देवे कि उससे पहलवान बन जाएगा। अरे तेरा गजब बोलियो, क्या वो वैद्य है? वो तो डांगर है, निरा पशु, या उसने बांग पी रखी है, या नशे में बोल रहा है। इस तरह की बकवास तो नशे वाला ही बोल सकता है। अब मान लीजिए कोई बोर्ड लगा रखा है कि साबुन विक्रेता, और उस साबुन विक्रेता तो कोई पूछा, भाई क्या साबुन कपड़े का मैल समाप्त नाश कर देगा, छुड़वा देगा? और वो नहीं, साबुन से कपड़े का मैल तो छूटता नहीं। फिर भाई साबुन का करेंगे क्या? कि उससे कपड़ा मजबूत बन जाता है। अगर यह छुरी किसी निकम्मी आत्मा की है तो क्या उसने कभी जिंदगी में, जीवन में साबुन देखा या कदे प्रयोग किया? केवल बकवाद करे या नशे में बोल रहा है? दो बात हो सकती है। ये सिद्धांत, ये छुरी है महर्षि दयानंद की, और इसकी नहीं, ये सारे ही से थे। ये सतयुग के ब्राह्मणक, कलयुग के ब्राह्मणक, सारे ब्रह्मा विष्णु, ये सारे इसी छुरी पर आधारित थे। और अब आपको दिखाते हैं पवित्र वेदों में, यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में 6 बार लिखा है कि वो परम अक्षर ब्रह्म, वो पूर्ण परमात्मा घोर पाप का विनाश कर देता है, साधक के घोर पाप को भी काट देता है। अब देखिएगा पवित्र वेद, पुण्यात्मा वेद है परमात्मा का विधान, उनकी महिमा का यथार्थ ज्ञान, और ये अपने द्वारा लिखी हुई इस तरह की दंत कथाएं, ये सत्यार प्रकाश जैसे नकली पुस्तकें, ये है इनकी अपने घर का ज्ञान। और यदि ये वेदों से नहीं मिलता है तो इसके आग लगा दे कि तगेर के, ये क्योंकि ये पढ़ने योग्य है नहीं, ये इसके अंदर हमारे सदग्रंथों के विपरीत ज्ञान है। जिस किसी पुस्तक में पाठ्यक्रम के विपरीत ज्ञान हो, क्या वो विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए? नहीं, फूक दे उसने किता अलग, वो तो दर्शन भी नहीं करने चाहिए उसके। अब देखिएगा पवित्र यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 का श्लोक नंबर 13, ये है महर्षि दान सरस्वती द्वारा अनुवादित। अब प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, 2/5 महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। इसमें लिखा है कि संपूर्ण 40 अध्याय इसका अनुवाद किया महर्षि दान सरस्वती ने, कृत महर्षि दान सरस्वती ने। ये प्रकाशक मुद्रक हैं इसके प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। अब आइए इसके आठवें अध्याय के 13वें श्लोक में। अथ अष्टमोध्याय 241 पृष्ठ पे, यहां देखिए, ये 13वां मंत्र है। देव कर्तस्य एनस्य अवजनम असि, मनुष्य कर्तस्य एनस्य अवजनम असि, पितर कर्तस्य एनस्य अवजनम असि। अब इसका यहां इनके द्वारा अनुवाद देखते हैं 242 पृष्ठ पे। दान स्वामी दानंद जी यहां अनुवाद कर रहे हैं। हे सबके उपकार करने वाले मित्र, आप दान देने वाले के एनस्य माने अपराध यानी पाप के विनाश करने वाले हो। ओए, अब यहां ये बात कैसे बिगड़ी रही कि पढ़ने वाला यहां से पढ़ना शुरू करता है, तो न सोचे मित्र मित्र के बारे में लिख रखा है, चला गए चलाएंगे, क्योंकि इसने तो ज्ञान का डंगा करने का मतलब था। वेदों का अनुवाद किया इसने बाद में, सत्यार प्रकाश लिख दिया पहले, और सत्यार प्रकाश पहुंच गया पूरे इसके भक्तों में सब जगह। अब ये अनुवाद करके अपने कलम से वेदों का अनुवाद कर रहा है कि परमात्मा पाप नाश कर दे, और इसकी अपना सिद्धांत कहता है पाप नाश साधना से, उपासना से पाप नाश नहीं होते, भगवान पाप नाश नहीं करता। और वेदों में लिखा और पढ़ रहा है और अनुवाद कर रहा है, फिर भी इसके हृदय में नहीं आया कि तू लिख के रहा है, तेरा विधान क्या है? अब यहां मित्र लिख दिया इसने, तो पढ़ने वाला नहीं सोचा करता कि मित्र के बारे में लिख रखा है, भगवान के विषय में नहीं है। अब देखिएगा, इन्हीं के द्वारा भगवान के नामों का विश्लेषण किया गया है। प्रथम समुल्लास यानी प्रथम अध्याय सत्यार प्रकाश में, ये देखिए उसमें मित्र का अर्थ इन्होंने क्या किया है स्वामी जी ने, ये देखिएगा प्रश्न नंबर 18 पे, समुल्लास नंबर प्रथम समुल्लास, प्रश्न नंबर 18 पे सत्यार्थ प्रकाश है, इसमें लिखा है कि जो सबसे स्नेह करे, सबको प्रीति करने योग्य है, वह है परमेश्वर, सबका सच्चा मित्र है, इसे परमेश्वर का नाम मित्र है। तो यहां इसे सिद्ध हो गया कि जहां मित्र का अर्थ है परमेश्वर, तो यहां हम कहेंगे हे सबके उपकार करने वाले परमेश्वर। अब इस परमात्मा ने सद्बुद्धि दी इन चतुर इन नकली ऋषियों की खाल तारने के लिए, इन्होंने कितने कुछ लिख रखा, वही परमात्मा ने इस दास को बुद्धि दी कि वहां देख इसके, वहां से पकड़ इसके शिकंजे और वहां से पता लगेगा ये क्या था। तो अब देखिएगा, हे सबके उपकार करने वाले मित्र, यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 को पढ़िए, ये सबके उपकार करने वाले परमेश्वर, मित्र कहो चाहे परमेश्वर, आप दान देने वाले के अपराध यानी पाप के विनाश माने नाश करने वाले असी माने हो। एन से माने अपराध, एन से माने पाप कहो चाहे अपराध, एन से माने पाप, इन्होंने खुद लिखा है। तो इसी प्रकार हमने समझना है, दान देने वाले के अपराध यानी पाप के नाश करने वाले हो। मनुष्य कर्तस्य, साधारण मनुष्यों के किए हुए एन से माने पाप के अपराध के विनाश करने वाले हो, अक्षमा करने वाले हो, छुड़वाने वाले हो। पिता के किए हुए एन से माने अपराध बोलो, विरोध आचरण लिखा है ना, अपराध के अच्छे प्रकार हरने वाले हो यानी नाश करने वाले हो। अवेदन माने नाश, विनाश करना। आत्म कर्तव्य, अपने किए हुए एन से माने पाप के दूर करने वाले, अवेजन माने नाश करने वाले, दूर करने वाले हो। एन स्वयं स्वयं हो घोर पाप के, अधर्म के, अधर्म के यानी घोर पाप के भी आप नाश करने हारे हो। ओए होए होए, जानता हुआ मैं जो कुछ भी अधर्म आचरण किया करता हूं या करूं, अनजाने में करूं या जाने में, इसका अर्थ यह है अनजान मैं जो कुछ भी किया करता हूं या करूं, उस सब एन से माने दुष्ट आचरण कहो नहीं, पाप के एन से माने पाप के, धर्म के पाप के एन से दुष्ट आचरण लिखा है, पाप के दूर करने वाले असी माने हैं आप, यानी आप घोर पाप का भी नाश करते हैं, जाने अनजाने में जो हमसे गलतियां होगी उनको भी आप पाप नाश कर देते हैं। अब वो प्रसंग हल करने के लिए परमात्मा परमेश्वर कबीर जी के उस पांचवें वेद के ज्ञान का एक श्लोक भी समझने के लिए इतनी बड़ी भूमिका, इतने बड़े ग्रंथ आपके समक्ष रूबरू कराने पड़ते हैं जब आपका समझ में आवे। कौन सा? भाई गुरु बिन का हुन पाया ज्ञाना, जो थो था बुस छड़े किसाना, भाई गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। महर्षि दयानंद जैसे वेदों को पढ़ भी रहे हैं, अनुवाद भी कर रहे हैं, और कोरे अज्ञानी अपनी थ्योरी बता रहे हैं परमात्मा पाप नाश नहीं करता। इससे क्या सिद्ध हुआ कि गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, इनको गुरु नहीं मिले, इन्होंने वेदों को पढ़ा और समझे नहीं सार रहे अज्ञानी, वेदों को नहीं समझ सके, ये कोरे अज्ञानी रहे। अब इसी प्रकार देखिए, देवताओं के गुरु बृहस्पति का ज्ञान और राक्षसों के गुरु प्रह्लाद वाले ग्रुप के गुरु शंकराचार्य का ज्ञान है, वो भी यही है कि प्रारब्ध कर्म यानी प्रारब्ध में जो पाप लिखा है वो तो भोगने से ही समाप्त होता है, उसका नाश नहीं होता। अब देखिए फिर श्रीमद देवी भागवत दुर्गा पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी प्रकाशक एवं मुद्रक है गीता प्रेस गोरखपुर गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। अब इसमें आपको दिखाते हैं प्रश्न नंबर 282 पे और सकंद नंबर 5वें सकंद में, यहां देखिएगा ये 5वां सकंद है। श्रीमद संक्षिप्त देवी भागवत 282 पे व्यास जी कहते हैं, ये राइटर ऑफ पुराण पुराणों का लेखक व्यास जी कहते हैं, देवराज इंद्र की बात सुनकर बृहस्पति जी उनसे कहने लगे। अब इंद्र से देवताओं का गुरु बृहस्पति क्या विचार दे रहा है यहां सुनिए 283 में, इसके बोल सुनो देवताओं के गुरु के। प्रारब्ध कर्म का अभाव बिना भोगे नहीं हो सकता, यह स्पष्ट है। यानी आपके भाग्य में कोई पाप आपका उदय हो रहा है, आपको दुख हो रहा है, वो भोगना ही पड़ेगा, कटेगा नहीं, नाश नहीं होगा। फिर बता भगवान की आवश्यकता क्या है, जब हमारे ऊपर आपत्ति पापत्ति आवेगी फिर बदलिया भगवान, फिर तो और यानी बिल्कुल नास्तिक हो जाएंगे इन सिद्धांतों से। और हो ही रहे थे हम कि कसर छोड़ रखी है। यहां देखो प्रारब्ध कर्म का अभाव बिना भोगे नहीं हो सकता, यह स्पष्ट है। आर्य संपूर्ण देवता तुम्हारे सहायक हैं, तुम स्वयं भी बुद्धिमान हो, फिर भी जो होनी है वह होकर ही रहेगी, तुम उसे टाल नहीं सकते। ऐसी स्थिति में सुख और दुख की चिंता में नहीं पड़ना चाहिए। महाभाग सुख और दुख ये दोनों कर्म से पुण्य और पाप के अक्षय के सूचक हैं, कि जितना दुख आवे है उसका तेरे पाप कट रहे हैं और सुख है वो तेरे पुण्य नाश हो है। आप बता रहे हैं, अतएव विद्वान पुरुषों को चाहिए कि सुख के अभाव में भी सर्वथा आनंद का ही अनुभव करे। अरे वाह, अतएव महाराज इस अवसर पर सुयोग्य मंत्रियों से परामर्श लेकर विधि पूर्वक यत्न करने में कटिबद्ध हो जाओ, यत्न करने पर भी जो होनहार होगा वही सामने आएगा। अब यहां देखिए एक और कमाल के रखा है, अतएव विद्वान पुरुषों को चाहिए कि सुख के अभाव में भी सर्वथा आनंद का अनुभव करे। अरे वाह मेरे वाह रे देवताओं के गुरु, अब आपके पेट में दर्द हो जा और मारे किल की अन्यों के पेट में दर्द हो जा फिर भी सुख का अनुभव करे खूब जोर से हंस है, इनका कहने का तात्पर्य कभी हो सकता है? तेरा आप आपत्ति आ रही है उसमें कैसे सुख अनुभव कर सकते हो? तो इसका कहने का भाव ये है, परमात्मा क्या कहते हैं कि पेट में दर्द हो गया, पेट में पीड़ा होगी, गोली मिले दवाई मिले और पेट का दर्द समाप्त हो जा फिर आप पर सुख हो गया। जब दर्द नहीं दुख ही दूर नहीं होगा तो खुश दुख में सुख का अनुभव कैसे हो सकता है? अच्छा ये तो हो गया देवताओं के गुरु बृहस्पति जी के विचार के, कर्म तो जितने भी हैं पाप और पुण्य ये तो भोगने पड़ेंगे, ये नहीं समाप्त हो सकते, तो भोग्य खत्म होंगे। और क्या बताया है कि जो सुख आपको प्राप्त है आपके पुण्य अक्षीण हो रहे हैं नष्ट हो रहे हैं, और जो आप पर आपत्ति आ रही है ये आपके पाप खत्म हो रहे हैं। ऐसे करो कर लिया नहीं होता भाई, आ लिया उड़ को भगवान की तरफ देखा भी कौन नहीं, जाए आपत्तियां आपत्तियां जा कौन बजा भगवान, फिर आप नास्तिक हो जाएंगे। तो इनके ये सिद्धांत सभी के थे। अब देखना आगे 243 पृष्ठ पे आपको राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य के विचार सुनाते हैं। शुक्राचार्य यहां देखिएगा 243 पृष्ठ पे, ये है चौथा सकंद 243 पृष्ठ और चौथा सकंद। व्यास जी कहते हैं प्रह्लाद की बात सुनने के पश्चात शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु ज्ञान दृष्टि से सब कुछ देखकर प्रसन्न हो गए। उनका मुख मुस्कान से भर गया। उन्होंने दैत्यों से कहा, दानवो तुम मेरे यजमान हो, तुम्हें न तो डरना चाहिए और न पाताल में ही जाना चाहिए। अपने सत मंत्र के प्रभाव से मैं तुम्हारी रक्षा कर लूंगा। यहां क्या कह रहा है कि मैं तुम्हें पाताल में नहीं छुपना पड़ेगा, वहां नहीं जाना पड़ेगा, मैं अपने सत मंत्रों से प्रभाव से तुम्हारी रक्षा कर लूंगा। या तो ये कह रहा है। आगे देखो, धर्म के मर्मज महाशय, प्राचीन समय में ब्रह्मा जी के मुख से मैंने जो बात सुनी है, अब आलिया ब्रह्मा जी के ज्ञान का ओढ़ देख लियो, ये भी यही कहता है, प्रारब्ध तो भोगने से ही समाप्त होते हैं, पाप तो कट ही नहीं सकते। प्राचीन समय में ब्रह्मा जी के मुख से मैंने जो बात सुनी है उसे बता रहा हूं, सुनो। यह वचन बड़ा ही हितकर सत्य और अटल है। उन्होंने कहा था, ब्रह्मा जी ने बताया ये ज्ञान जो शुक्राचार्य अपने शिष्यों को बता रहा है, कि होने वाली बातें अवश्य होकर रहती हैं। धरातल पर कोई भी ऐसा सुयोग पुरुष नहीं है जो प्रारब्ध को विफल बनाने में समर्थ हो सके। विपरीत समय के इस कारण इस समय तुम्हारी शक्ति अक्षीण हो गई है। प्रह्लाद आदि को कह रहा है शुक्राचार्य, अतः एक बार तो तुम्हें देवताओं से प्रास्त होकर पाताल में जाना ही पड़ेगा। समय सदा बदलता रहता है, कुछ ही दिन पूर्व तुम सम्राट रह चुके हो। प्रह्लाद को कह रहे हैं, अब सुन लें गुरुओं की, ये थे दोगले गुरु, डुप्लीकेट माल। अब ऊपर तो कह रहा है कि तुम चिंता मत करो, मैं अपने सत मंत्रों से तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम्हें पाताल नहीं जाने दूंगा। और फिर ने कहा, भाई एक बात सच्ची है, ब्रह्मा ने तो सुनी थी मैंने, प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ेगा, और तुमने एक बार देवताओं तो हार के पाताल तो जाना ही पड़ेगा। अरे बता के गड्ढे इनने, ऊपर तो न्यू कह रहा मैं सत मंत्रों से तुम्हारी रक्षा कर लूंगा, फिर न्यू कह दे एक बात तो सच्ची है, ब्रह्मा ने बताई थी, प्रारब्ध तो भोगना पड़ेगा, तुमने एक बार तो हार के पाताल जाना ही पड़ेगा, फिर तू टट्टू कर लेगा, बता तू के करेगा। ये नो बंडा रहे थे इन भोली आत्माओं को, और ये भोली आत्मा श्रद्धालु इतने होते हैं, भाई गुरु जी जो कह रहे साची कह रहे, बोलिया ना करते हैं। अब वैसे ये थ्योरी सिद्धांत है तो सही कि गुरु जी जो कहते हैं वो साची का आकर है, और उनके आगे वाद विवाद नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल फाइनल है। पर ये गुरु ना थे, गुरु के रूप में अज्ञानी थे, और भोली आत्माओं ने उनको गुरु मान लिया। गुरु जी जो कह रहे हैं आंख मीच के बैठे रहे, हाँ ठीक कह रहे, कुछ भी कहो। अब सतगुरु जो गुरु ज्ञान कहेगा वो सच्चा ही बोलता है, उसमें वाद विवाद और विक्षेप और उसमें कोई गुंजा शंका की नहीं रखनी चाहिए। जो गुरु कहेगा वो सच्ची कहेगा, झूठ नहीं बोलता। अपने आत्माओं, ये इतना बड़ा चैप्टर है कि अभी तो ये प्रारंभ करना था, वो महर्षि रामानंद जी और कबीर परमात्मा की वार्ता का प्रकरण, और ईब तक तो यह भूमिका बनी है इस अज्ञान को ढाने की और सच्ची बात बताने की। अब क्या कहते हैं, परमात्मा कहा करते थे, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक ना न्याय विचार, जहां पर तनिक ना न्याय विचार। भाई वैश्या उढ़े मुल मुल खासा, गल मोतियों के आर, वैश्या उढ़े मुल मुल खासा, गल मोतियों के आर, पतिव्रता को मिले न खादी वसूखा, नरस आहार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक ना न्याय विचार। भाई पाखंडी की पूजा जग में, संत को कहें लबाड़े। कबीर परमात्मा ने तो यह ज्ञानी ब्राह्मण और मुल्ला और कज्जीर ये नकली महर्षि कहा करते तो पाखंडी है, मुंह माई वाय बात बक्के है, लबाड़ है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश सर्वेश्वर है, महेश्वर नहीं है, ये इनका जन्म मृत्यु होता है। कहते हैं ये तो लबाड़ है, ये मुंह मावा बंड है, झूठा है। तो परमात्मा के कहा करते रहे, देखो काल तेरा निरंजन धन तेरा दरबार, ओ काल तेरा कितने भी न्याय नहीं भाई। पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लबाड़, पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लबाड़। अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूड गवार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार। कह कबीर सुनो भाई साधो या सब उल्टा व्यवहार, कह कबीर सुनो भाई साधो सब उल्टा व्यवहार। भाई सच्चा को तो झूठा बतावे, इन झूठों का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार। जहां पर कह कबीर सुनो भाई साधो सब उल्टा व्यवहार, कह कबीर सुनो भाई साधो या सब उल्टा व्यवहार। सचों को तो ये झूठा बतावे, इन झूठों का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार। जहां पर तनिक न न्याय विचार। परमात्मा जब आए थे कबीर भगवान सन 1398 से 1518 तक रहे थे। ये अमृत ज्ञान जो दास आपको सुना रहा उन्हीं का दिया हुआ यही बताया करते थे। जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नासे, जैसे चिनगारी अग्नि की भाई पड़े पुराने गाशे। परमात्मा वेद ज्ञान बता रहे हैं कि जब ही सच्चे नाम का आपको प्राप्त हुई, सच्चे नाम आपको प्राप्त हुआ और सच्चे दिल से आपने श्रवण करना शुरू कर दिया सतनाम का। सतनाम सतनाम कोई जाप नहीं है, वो सच्चा नाम दो अक्षर का होता है, उसमें एक ओम मंत्र एक गुप्त मंत्र है जिसको तत् बोलते हैं, वो अलग मंत्र है। जिनको सतनाम प्राप्त हो चुका है वो प्राणी वो पुण्यात्मा समझ रही है। तो कहते हैं जब ही सतनाम हृदय धरो, हृदय धरण का मतलब है सच्चे दिल से स्वीकार कर सच्चे भाव से उसका सिमरण शुरू कर दोगे कसक के साथ, भयो पाप को नाश यानी सब नाश पाप आपके नाश हो जाएंगे। किस प्रकार, जैसे चाहे लाखों टन सूखा घास पड़ाओ और उसमें एक माचिस की सींक चास कर डाल दे, जला के सारे को फूक कर नाश कर देगी, ढेर बना देगी, राख बना देगी थोड़ी सी और चलेगी तेज हवा इधर उधर उसको करके साफ कर देगी। क्या बताते हैं परमात्मा, कहा करते थे जब ही ये कहते थे प्रारब्ध नहीं कटे, पाप नाश नहीं होते साधना से, और परमात्मा पंडित छोड़ कबीर जी कहा करते थे जब ही सतनाम सच्चे नाम का जाप आपको मिल जाएगा, जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नाश और मानो चिनगारी अग्नि की भाई पड़ी पुराने घास, इस तरह आग ला देगा मेरा मंत्र आपके ढेर सारे पापों में। कैसे कि आपके युगों युगों के संचित कर्मों का ढेर बना हुआ है, पाप गणे और पुण्य थोड़े, उन पापों को यदि भोग कर ही पूरा करना पड़ेगा तो 84 लाख योनियों में भोग लेते हम, नरक में भी जाते हैं, जब तब भी खत्म ना होते वो फिर भी बैलेंस रह जाते हैं। तो कैसे खत्म हुआ यो के फिर दोबारा 84 लाख योनियों में मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ, फिर नरे पाप को मालिए शास्त्र विरुद्ध साधना करके भक्ति ठीक करी नहीं, वो फिर ढेर हो गया। पृथ्वी ऊपर पग जो धारे करोड़ जीव एक जन्म मारे, ओहो एक दिन में करोड़ों जीवों की हिंसा करके आप विश्राम करते हो अपने पेट भरने के लिए, और वो पाप आपके बैड अकाउंट में लिखे जाते हैं, चाहे जाने में हो चाहे अनजाने में। जब तक आप पूर्ण परमात्मा कबीर जी की शरण में नहीं आते, पूर्ण संत के माध्यम से सच्चा उपदेश, ये सत्यनाम सच्चा नाम और सार नाम आपको नहीं मिलता, तब तक आप किसी भी इष्ट की, ब्रह्म की, परब्रह्म की या किसी भी देव की पूजा करते हो, आपको दोनों पाप भोगने पड़ेंगे, कर्म दोनों कर्म भोगने पड़ेंगे, पुण्य भी और पाप भी। अब पाप तो दिन में हुआ करोड़ों और पुण्य को ना एक भी, क्योंकि हम मुश्किल थे मंगलवार को 100 रुपये का प्रसाद बैठा करते सातवें दिन, बताओ के पुण्य हो गया, चार बूंदी बांट दी थे, वो कोई पुण्य था। और पाप बिना गिनती के, हमें साधनाएं का ना पता था, वो कौन सी भक्ति करे, कैसे धर्म पुण्य किए करें, तो पाप की तो गाड़ी वर्गी एक दिन में, और पुण्य होया ना एक भी, तो एक का जन्म। और आप भक्ति करेंगे, जैसे बाप हो, आपको सतनाम मिल गया, प्रथम मंत्र मिला, उसी दिन से आपको राहत शुरू हो जाएगी। दूसरा मिलने के बाद तो बहुत ही कमाल हो जाएगा, तो तीसरा मिल गया सार नाम, फिर तो बेड़ा पार होगा। अब आपको मंत्र मिल गया, आप भी काम करते हो, सतनाम आपको मिल गया, आप भी कार्य करते हो उसी तरह जैसे अन्य आन उपासक करते हैं, और आपसे भी पाप होते हैं, लेकिन आपके वो पाप जो अनजाने में हो रहे हैं वो इस भक्ति से डेली नाश हो जाएंगे। जैसे परमात्मा कहते हैं, इच्छा कर मारे नहीं, बिन इच्छा मर जा, कह कबीर दास का पाप नहीं लगा। एक तो आपको ऐसे पाप नहीं होंगे, और फिर जैसे आप किसान हल बाता है, मजदूर मिट्टी खोदता है, या और भी बहुत से कार्य करते हैं, पोछा मारते हैं, हमें पता है कि अब पाप विनाश हो रहे हैं और करने पड़ रहे हैं, ना जीव भी विनाश हो रहे हैं और करने पड़ रहे हैं। हाली को पता है कि ना जाने कितने कीड़े मकोड़े के पेट में के वो नुकीली फाड़ी निकाल रहा हूं और मर रहे हैं, उनको जमीन से बाहर पटका जा रहा है। कहते हैं इस तरह के जो पाप तुम्हें होंगे कर्तव्य कर्म में, ये आपके इस भक्ति के कोष के द्वारा साथ साथ नष्ट होते रहेंगे। जैसे आप वस्त्र पहनते हो कपड़े, और डेली मैले हो जाते हैं, आप साबुन और पानी से डेली धोकर सुखा देते हो, उज्जवल हो जाते हैं। ऐसे ही आपको जो ये मंत्र मिला हुआ है, ये आपके पापों को डेली हिसाब करेगा, और फिर रहेगा संचित मंत्र, जो संचित कर्म आपके, वो उस समय फूके जाएंगे जब आपको अंतिम, वो तो डिपॉजिट है, वो अभी आपको हानि लाभ नहीं दे रहे, वो तो रखे हैं, उनको परमात्मा भी नहीं करेगा आपका साफ, क्योंकि ना बिराब कब काल के जाल में आकर नाम छोड़ जाओ, गुरुजी से दूर हो जाओ, और परमात्मा इतना बावड़ा नहीं है, वो सारी जाने है, ये कभी भी काल प्रेरित होकर प्राणी फिर भी यहां से भाग सकता है, क्योंकि इसके कर्महीनता इतनी है। तो उनको जो आपका नाम, जो संचित कर्म आपके रखे हैं, उनको परमात्मा फिर फूक देगा। कहते हैं कर्म भ्रम ब्रह्मांड के, मैं पल में करूं नेश, और जिन हमारी दोही दी सो करो हमारे पेश। अंत समय में भी जब आप परमात्मा की कसक में अंतिम सांस तक इनकी शरण में सिमरन करते हुए जाओगे, तब आपके पापों को परमात्मा आग लगा देगा। कैसे? राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कदे तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। यही आपने गीता जी में सुना कि जो मेरी भक्ति अंतिम श्वास तक करता है मुझे प्राप्त होता है, और उस भगवान की भक्ति तत्ब्रह्म की, परमक्षर ब्रह्म की, पूर्ण ब्रह्म की साधना तत्वदर्शी संत से लेकर करता है, वो फिर अंतिम श्वास तक भक्ति करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है तो उसको प्राप्त होता है। यही परमात्मा कहते हैं कि राम नाम रटते रहो। वो राम नाम कौन सा है? ये दो मंत्र का, ये तीन मंत्र का जो नाम है ये राम का नाम है, ये तीन मंत्र का जो मंत्र है ओम तत्सत, यो कंप्लीट है राम नाम, यानी पूर्ण ब्रह्म का मंत्र ये है। तो ये है वो राम नाम, राम नाम रटते रहो। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, यानी अंतिम श्वास तक। और कदे तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। अब आज का जो सत्संग प्रारंभ हुआ है कि स्वामी रामानंद जी बनारस में महाविद्वान वेदों के कहलाते थे, और उनको कैख है भी ज्ञान नहीं था वेदों और गीता का, लेकिन वो परमात्मा के पूर्व जन्मों के साथी थे, सेवक रहे हैं। उस प्रतिफल को परमात्मा देने के लिए कबीर जी स्वयं परमेश्वर आए, बालक रूप धारण किया, और उस अज्ञा उस महर्षि की उस वो अज्ञानता हटाने के लिए उनके शिष्य बने, उनके दास बने। वो कैसे बने? रामा स्वामी रामानंद जी प्रतिदिन अपने आश्रम से चलकर गंगा जी में स्नान किया करते, गंगा दरिया में, एक पंच गंगा घाट बनारस में गंगा के किनारे बना हुआ, वो आज भी विद्यमान, आज भी वर्तमान में भी विद्यमान है। ये दास सैकड़ों भक्तों को साथ लेकर देख कर आए थे पंच गंगा घाट, और वहां उस घाट के ऊपर एक मकान बना हुआ है, एक आश्रम बना है बिल्कुल घाट के ऊपर, और वो उन्हीं रामा महर्षि रामानंद जी के अनुयायियों द्वारा संचालित है। उसमें कबीर जी का फोटो है और रामानंद जी का फोटो है, और किसी का नहीं आज वर्तमान में भी। तो वहां कभी परमेश्वर वो रामानंद जी प्रतिदिन स्नान करने जाया करते थे, जिसमें परमात्मा 5 वर्ष के थे उस समय, महर्षि रामानंद जी 104 वर्ष के वृद्ध थे, वयोवृद्ध थे। और गंगा जी में स्नान करने प्रतिदिन जाते थे, उनके आश्रम से थोड़ी ही दूरी पर था, 1-2 एकड़ यानी 200-400 फुट की दूरी पर। परमात्मा कबीर जी ने अपनी उस प्यारी आत्मा को शरण में लेने के लिए रामानंद जी को उनके शिष्य बने, और गुरु मर्यादा बनाने रखने के लिए कि आने वाले समय में ये काल के दूत यूं ना कह दें कि कबीर जी ने कौन से गुरु बनाया था, इसलिए गुरु की आवश्यकता ही नहीं, तुम सीधे भगवान से कनेक्शन कर लो। जैसे वर्तमान में एकाद ये संत अब शुरू हो गया था इस तरह की कहानी बनाने, जैसे राम सुखदास जी जिन्होंने गीता जी का अनुवाद भी किया हुआ है, वो क्या कहते हैं कि गुरु के कहते थे कि गुरु की आवश्यकता नहीं, अब तो उनकी मृत्यु होगी, गुरु की आवश्यकता नहीं, सीधे श्री कृष्ण से तार जोड़ लो, बस श्री कृष्ण से तार जोड़ लो। अब इस तरह की थ्योरी शुरू हो गई थी, और इसने तो आसानी से जीव मान लेगा कि जरूर से गुरु के पास जाओ और 36 पंगे कराएंगे, ठीक है श्री कृष्ण से तार जोड़ लेंगे, ये जुड़ लिए तार नहीं होता। अब आप पे कोई नहीं होगा, मैं अपने तार जोड़ लूंगा, बिजली तो कद्दे नहीं जुड़े हैं, वो तो जोड़नी ऐसे प्रार्थना करनी पड़ेगी, उसकी मर्यादा का पालन करते हुए वो तार जुड़ाने पड़ेंगे। इसलिए परमेश्वर ने कबीर जी ने 1.5 वर्षीय बालक का शिशु रूप धारण किया, 2.5 वर्षीय बालक, 5 वर्ष की आयु दिखा रहे थे, 2.5 वर्ष के बालक का रूप धारण किया, और उस गंगा घाट की पैड़ियों के ऊपर जाकर लेट गए। स्वामी जी रामानंद जी मुंह अंधेरे बखत से उठकर जाते थे, ब्रह्म मुहूर्त होता है सूर्य उदय होने से 1.5 घंटा पहले, स्नान करने के लिए वहां गए, और अंधेरे में परमात्मा दिखाई ना दिए उसको रामानंद जी को, और कबीर जी के सिर में पैर की खड़ाऊ लगी, जूता वो लकड़ी की खड़ाऊ होती थी जूतों के स्थान पर चप्पल, वो परमात्मा के सिर में लगी बालक रूप में लेटी हुई थी, ओए होए, तो रोने लगे जैसे बालक रोता है, ट्या ट्या ट्या। अब रामानंद जी ने सोचा कोई बालक था और इसका चोट लगी, साधु दयालु होते, एकदम झुके नीचे ने और हाथ सिर पे हाथ फेरा, बेटा रो मत, राम राम बोल, राम राम बोल, राम के नाम ते सारे दुख दूर है, राम राम। अब परमात्मा चुप हो गए और रामानंद जी के गले में एक कंठी की माला होती थी, कबीर पंथी रख्या करें, एक तुलसी की माला, और वो एक ही मन का होता है उसमें, उसको वो पहचान है कि ये वैष्णो साधु है और कबीर पंथी है, यानी कबीर पंथियों की ये पहचान बनाते हैं वो, क्योंकि रामानंद जी वैष्णो साधु थे और वे कंठी की माला रखा करते। अब कबीर पंथी भी वह टेपस्पीट रहे, वही परंपरा अपनाए हुए हैं वर्तमान में, जबकि वो तो एक परमात्मा ने उस बोधि आत्मा के अज्ञान को हटाने के लिए लीला की थी कि वो उसी ने मान्य थे जिसके गले में कंठी माला हो। रामानंद जी की वह कंठी एक तुलसी के मणिये की से मोटे मन का रस्सी में डाल धागे में डालकर पिरो रखा होता है, वो नकल का सिरमत है और परमेश्वर कबीर जी के गले में डल गई है। अंधेरे में रामानंद जी ने दिखी को ना, परमात्मा कबीर जी शांत हो गए, उनका काम पूरा हो गया, चुप हो गए, तो रामानंद जी बोले बेटा बैठ जा, यहां बैठ जा, मैं स्नान कर लेता हूं, तुझे आश्रम ले चलूंगा, जनता ना कर डरिए ना, घबरा मत, तुम्हारे घर भिजवा दूंगा। अब स्वामी जी तो स्नान करने लगे, अंतर्यामी वहां से अंतर ध्यान हो गए, आके अपने मुंह बोले मात पिता नीरु नीमा की कुटिया में आके सो गए। रामानंद जी स्नान करके बाहर आए, देखा उन्हें बालक है नहीं, उन्होंने सोचा चानना हो गया है, रोशनी होगी है, चला गया होगा बालक अपने घर में, बात समाप्त करी। इस प्रकार परमेश्वर कबीर जी ने स्वामी रामानंद जी को गुरु धारण किया, गुरु बनाया। अपने आत्माओं, अब ये प्रसंग बहुत लंबा चौड़ा है, समय पूरा हो गया है, ये कल सुबह आपको सुनाएंगे शेष कथा। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, कबीर बंदी छोड़, कबीर परमेश्वर, कबीर देव, अल्लाह कबीर, अल्लाहु अकबर, ये वही परमात्मा है जो सन 1398 से और सन 1518 तक 120 वर्ष इस काल के लोक में और इस पृथ्वी के ऊपर बनारस भारतवर्ष की पवित्र भूमि पर बनारस शहर अर्थात काशी में ये परमात्मा रहे। ये सह शरीर आए थे, सह शरीर चले गए थे, इनका किसी मां से जन्म नहीं हुआ था। जैसा कि आप कल के सत्संग में सुन रहे थे, परमात्मा बताते हैं अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को कि ये सभी आत्माएं काल के जाल में फंसी हुई हैं, ये सब मेरी आत्माएं हैं, चाहे कोई चींटी बना है, चाहे कोई हाथी है, यानी सभी प्राणी, चाहे मानव शरीरधारी, चाहे देवता हैं, ये सभी परमात्मा कबीर जी कहते हैं मेरी आत्मा है, मेरे बच्चे हैं, और ये अपनी गलती के कारण इस काल के जाल में फंस गए। इस काल भगवान ने अर्थात 21 ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्म ने इन भोली आत्माओं को अपनी चुंगल में जबरदस्ती फंसा रखा है, बाय फोर्स इनको ऐसे रसों से बांध दिया, इनको बंधे भी नजर नहीं आ रहे, जैसे काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, ये अपने तीनों पुत्रों के माध्यम से इन प्राणियों को यहां बांधे रखता है। परमात्मा स्वयं आते हैं, सत्यलोक से चलकर आते हैं, अपनी प्यारी आत्माओं को आकर मिलते हैं और उनको यथार्थ ज्ञान भक्ति मार्ग से परिचित करवाते हैं। फिर वो अच्छी आत्माएं, वो श्रेष्ठ आत्माएं, जो उच्च आत्माएं हैं, जो पुण्यात्मा अत्यधिक पुण्यात्माएं हैं उनको प्रभु आकर मिलते हैं, क्योंकि वो शीघ्र ग्रहण कर लेते हैं भक्ति मार्ग को और फिर ऐसे दृढ़ हो जाते हैं, वो सारी पृथ्वी एक तरफ हो जाओ और वो उस मार्ग को त्यागते नहीं, किन्हीं भी संकट या आपदाओं या किसी के विरोध से वो उल्टे नहीं हटते। ऐसी पुण्यात्माओं को प्रभु आकर प्रथम मिलते हैं और अपने तत्व ज्ञान से परिचित कराते, फिर वो प्यारी आत्माएं जन साधारण तक उस परमेश्वर के ज्ञान को आंखों देखे हाल को पहुंचाते हैं। अब पुण्यात्माओं, हम परमात्मा की पहचान कैसे करें? हमने उसका कोई क्राइटेरिया फिक्स करना पड़ेगा, हमने उसका कोई आधार बनाना पड़ेगा कि किस वस्तु से हम पहचाने भगवान को, वो साकार है या निराकार है और वो कैसी लीला करता है। उसके लिए हमने आधार माना है पवित्र चारों वेदों को, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी को और पवित्र 18 पुराणों को और पवित्र परमेश्वर कबीर देव की वाणी को, सच्चिदानंद घन की वाणी को। अब परमेश्वर कबीर जी की वाणी को अर्थात कबीर सागर, कबीर साखियां में जो लिखी हुई परमात्मा की अमृत वाणी है या कबीर बीजक में, इनको ये ऋषि जन, ये नकली गुरु, नकली ऋषि, ये डुप्लीकेट जो मार्गदर्शक थे, ये क्या कहा करते कि कबीर तो एक अशिक्षित है और इलिटरेट आदमी है, इस ये क्या जाने सदग्रंथों के गूढ़ रहस्यों को, क्योंकि वो संस्कृत में लिखे हुए। तो आज से 600 वर्ष पहले तो उन नकलियों का दाव लग गया, जनता को गुमराह करने में वो सफल हुए, परंतु आज वही अमृत वाणी जिसको ये रिजेक्ट किया करते थे, वो परमेश्वर की वाणी, कबीर जी की वाणी सब सदग्रंथों से मेल खाती है। जो ग्रंथ सदग्रंथ, जो वेद और गीता जी बताते हैं, वही हमारे परमेश्वर की वाणी बताती है। जो पुराणों में वर्णन है वही हमारे कबीर परमात्मा 600 वर्ष पहले बताया करते थे। आज इन पुराणों में हमें सत्य मिली। इससे एक तो ये हमने लगाना, ये हमारे परमात्मा को पहचानने में ये सहयोगी है एक पॉइंट कि 600 वर्ष पहले परमात्मा आए और उन्होंने क्या बताया था। उन्होंने बताया था कि धर्मदास ये ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, क्योंकि इस धर्मदास जी जो बांधवगढ़ के रहने वाली एक पुण्य अच्छी आत्मा, पुण्य आत्मा थी, श्रेष्ठ आत्मा थी, उनको भगवान मिले थे मथुरा में। वो ऐसे ही धार्मिक स्थलों पर भ्रमण के लिए गए हुए थे तीर्थ यात्रा पर, तो वहां परमात्मा कबीर जी स्वयं एक जिंदा महात्मा, मुसलमानों में एक जिंदा महात्मा होते हैं, जिंदा साधु, वो एक ही काला ओवरकोट पहनते हैं घुटनों तक का और काला ही टोप पहनते हैं सिर पे और एक कच्छा पहनते हैं बस। उन उसको कहते हैं, ऐसी वेशभूषा वाले को जिंदा महात्मा कहते हैं। तो उस जिंदा के रूप में परमात्मा उनको मिले थे और उनको फिर, क्योंकि वो धर्मदास जी विष्णु जी के उपासक थे और परमात्मा ने उसको समझा, धर्मदास आप गलत मार्ग पर जा रहे हो, ये साधना तुम्हारी ठीक नहीं है, शास्त्र विरुद्ध है। काफी वाद विवाद हुआ था प्रभु के साथ उस भोली आत्मा का और फिर सत्य को धर्मदास जी ने स्वीकार करना पड़ा। तो उस समय बताया था परमात्मा ने कि धर्मदास ये जग बोराना और कोई ना जाने पद निर्वाण, निर्वाण माने मोक्ष मार्ग, कि धर्मदास ये जग बोराना कोई ना जाने पद निर्वाणा, यानी कोई भी मोक्ष मार्ग से परिचित नहीं है। पुण्यात्मा ये बात समझ में नहीं आती कि प्रत्येक आदमी एकदम फड़क जा है नो सुनकर, क्या किसी को भी पता नहीं मोक्ष मार्ग का। कबीर जी ने जो शब्द कहे, हाँ किसी को भी पता नहीं मोक्ष मार्ग का, पूर्ण मोक्ष मार्ग का। तो परमात्मा ने उस समय आकर बताया था कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है। तो उस समय परमात्मा को ये कहकर रिजेक्ट करने की चेष्टा की नकली गुरुओं और संतों ने कि कबीर जी तो अशिक्षित है, ये क्या जाने गुड़ रहस्य वेदों और गीता के और पुराणों को, ये नहीं समझता, ये ऊट पटांग बातें करता है, झूठ बोलता है। ये झूठा है। और परमात्मा क्या बताया करते थे कि धर्मदास ये जग बोराना सब संसार विचलित है और कोई न जाने पद निर्वाण, कोई भी भक्ति के यथार्थ मार्ग को मोक्ष मार्ग की साधना पद्धति माने विधि को, पद्धति उसकी वे ऑफ वर्शिप को नहीं परिचित है पूर्ण मोक्ष की। और कहते हैं अब मैं तुझे जो कथा सुनाऊंगा सृष्टि रचना की, इसलिए मैंने ये कथा सुनानी पड़ी कि कोई भी परमात्मा से परिचित नहीं है, अपनी महिमा परमेश्वर ने आप ही बताई और ये सृष्टि रचना का यथार्थ ज्ञान भी प्रभु ने दिया।